एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
और मेरी तरफ से भी नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। आजकल की जो ये भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, मुझे लगता है ये हम सबके काम आ सकती है।
हाँ, कौन सी किताब है?
किताब है डॉक्टर जोसेफ ए एनिबाली की रिक्लेम योर ब्रेन, मतलब अपने मस्तिष्क पर दोबारा नियंत्रण पाएं।
अरे वाह, रिक्लेम योर ब्रेन, ये तो नाम से ही लग रहा है कि आज के जमाने के लिए है।
बिल्कुल, कौन है जो आजकल तनाव, चिंता या ऐसा महसूस नहीं करता कि दिमाग बस दौड़ता ही रहता है, फोकस ही नहीं बनता।
सही कहा, ऐसा लगता है जैसे दिमाग की रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है ना?
हाँ, और ध्यान कहीं टिकता ही नहीं।
और देखिए, ये किताब सिर्फ लक्षणों की बात नहीं करती, ये थोड़ा गहराई में जाती है। ये समझाती है कि ये जो व्यस्त दिमाग वाली हालत है ना,
ये कोई हमारी कमी नहीं है, मतलब ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ी चीज हो सकती है। और अच्छी बात यह है कि इसे समझा और संभाला जा सकता है।
अच्छा, तो ये कोई पर्सनल फेलिंग नहीं है बल्कि एक तरह की कंडीशन है।
हाँ, कुछ वैसा ही। तो आज हम इसी किताब के आईने में झांक कर देखेंगे कि अपने दिमाग को बेहतर कैसे समझें और हाँ, उसे शांत कैसे करें।
बहुत बढ़िया, तो फिर शुरू करते हैं लेखक से। कौन है ये डॉक्टर जोसेफ एनिबाल?
हाँ, तो डॉक्टर एनिबाली कोई आम मनोचिकित्सक नहीं है। वो अमेरिका में एक बहुत जाने माने क्लिनिक हैं, एमिन क्लिनिक्स, वहां मुख्य मनोचिकित्सक हैं।
अच्छा,
और उनके पास दशकों का अनुभव है, मतलब हजारों मरीजों के साथ काम करने का तजुर्बा।
वाह, दशकों का अनुभव तो मायने रखता है।
हाँ, और जो बात उन्हें दूसरों से अलग करती है वो है उनका तरीका। वो दिमाग की इमेजिंग का इस्तेमाल करते हैं, खासकर स्पेक्ट स्कैंस।
स्पेक्ट स्कैंस, ये क्या होता है?
ये एक तरह की तकनीक है जिससे पता चलता है कि दिमाग के किस हिस्से में खून का बहाव कैसा है,
हाँ,
कहाँ ज्यादा एक्टिविटी है, कहाँ कम।
ओ, तो वो असल में दिमाग के अंदर की तस्वीरें देखते हैं।
बिल्कुल, सोचिए, उन्होंने हजारों ब्रेन स्कैन्स देखे हैं और वो इन स्कैन्स के पैटर्न को मरीजों की भावनाओं, उनके व्यवहार से जोड़ते हैं।
ये तो कमाल है, मतलब सिर्फ बातें नहीं बल्कि वो देख पा रहे हैं कि अंदर क्या चल रहा है।
सही पकड़ा। ये जो जटिल सी न्यूरोसाइंस है और हमारी जो रोजमर्रा की मानसिक उलझने हैं, उसके बीच वो एक पुल बनाते हैं।
इससे तो उनका नजरिया बहुत प्रैक्टिकल और वैज्ञानिक हो जाता होगा।
हाँ, और उनका जो मूल मंत्र है वो ये कि मानसिक स्वास्थ्य असल में दिमाग का स्वास्थ्य है।
मेंटल हेल्थ इज ब्रेन हेल्थ।
एग्जैक्टली। जब हम चिंता या डिप्रेशन को दिमाग की फिजिकल फंक्शनिंग के नजरिए से देखते हैं ना, तो वो जो शर्म वाली बात होती है ना, या खुद को दोष देना, वो कम हो जाता है।
हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। लगता है कि हाँ, ये एक प्रॉब्लम है जिसे समझा जा सकता है, जिसका हल हो सकता है।
बिल्कुल, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, उनके पीछे हजारों लोगों की मदद करने का अनुभव है जो उनकी बातों को वजन देता है।
तो अब आते हैं किताब पर, रिक्लेम योर ब्रेन, ये किन लोगों के लिए है?
ये किताब खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो महसूस करते हैं कि उनका अपना ही दिमाग उनके काबू से बाहर है।
जैसे?
जैसे लगातार चिंता बनी रहती है या कुछ ऐसे विचार हैं जिनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल है, एक नेगेटिव सोच का चक्कर सा चलता रहता है।
ओह, जिसे वो व्यस्त दिमाग या बिजी ब्रेन कहते हैं।
हाँ, वही। और किताब का जो सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार है वो ये है
क्या?
कि ये व्यस्त दिमाग आपकी कोई नैतिक कमजोरी या इच्छा शक्ति की कमी नहीं है।
अच्छा,
तो फिर क्या है?
ये अक्सर आपके दिमाग के कुछ हिस्सों के जरूरत से ज्यादा एक्टिव होने, मतलब ओवर एक्टिविटी,
या फिर कम एक्टिव होने का नतीजा है।
अंडर एक्टिविटी।
बिल्कुल, ये एक तरह की शारीरिक स्थिति है जिसका इलाज हो सकता है। सोचिए, अगर आपकी चिंता या उदासी आपकी गलती नहीं बल्कि आपके दिमाग की वायरिंग का मसला हो तो।
ये तो पूरी सोच ही बदल देता है, मतलब ब्लेम गेम खत्म।
हाँ, तो ये किताब कहती है कि सिर्फ लक्षणों पर मरहम लगाने के बजाय जड़ तक जाओ।
क्यों ना समझें कि दिमाग के कौन से हिस्से हमारी फीलिंग्स और विचारों को कंट्रोल करते हैं और उनमें क्या गड़बड़ी हो सकती है।
सही, और यहीं पर वो स्पेक्ट स्कैन जैसी तकनीकें काम आती हैं।
अच्छा, वो कैसे?
स्पेक्ट स्कैन, जैसा मैंने बताया, दिमाग में खून के बहाव को दिखाता है। तो जहां ज्यादा खून बह रहा है, मतलब वहां ज्यादा एक्टिविटी है, जहां कम वहां कम एक्टिविटी।
तो इससे पता चल जाता है कि दिमाग के कौन से हिस्से ज्यादा गर्म या ठंडे पड़े हैं। एक तरह से मैप मिल जाता है।
हाँ, एक रोड मैप जैसा, जिससे इलाज को ज्यादा सटीक और व्यक्तिगत बनाया जा सके। किताब का निचोड़ यही है कि अपने दिमाग की सेहत का ख्याल रखकर हम अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर ला सकते हैं।
ठीक है, तो चलिए इस व्यस्त दिमाग की पहेली को थोड़ा और सुलझाते हैं। पहले ये समझते हैं कि ये है क्या बला। मतलब इसके लक्षण क्या हैं?
किताबें इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, ये सिर्फ कभी कभार होने वाला स्ट्रेस नहीं है।
ये एक लगातार बनी रहने वाली स्थिति है।
दिमाग में जैसे हमेशा एक शोर समझता रहता है।
हाँ, जैसे कभी शांति ही नहीं मिलती।
बिल्कुल, चिंता की एक लहर जो कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। नेगेटिव ख्यालों का एक जाल जिससे निकलना मुश्किल लगता है, यहाँ तक कि आराम करना भी मुश्किल हो जाता है।
और ये शायद अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से दिखता होगा।
हाँ, किताब इसके कई चेहरे बताती है। जैसे किसी को बहुत ज्यादा घबराहट होती है, वो हुआ एंग्शियस ब्रेन।
ठीक है।
किसी के मन में एक ही तरह के अनचाहे विचार घूमते रहते हैं, ऑब्सेसिव ब्रेन।
जैसे OCD में होता है।
हाँ, कोई गहरी उदासी और नाउम्मीदी में फंसा रहता है, डिप्रेस्ड ब्रेन। कोई पुरानी दर्दनाक यादों से जूझ रहा है, ट्रॉमेटाइज्ड ब्रेन।
किसी को किसी चीज की लत है, एडिक्टेड ब्रेन।
या
किसी का ध्यान ही नहीं टिकता, डिस्ट्रैक्टेड ब्रेन, जैसे ADD, ADHD वाले।
सही।
तो पहला कदम है ये पहचानना कि आपकी अपनी चुनौती किस तरह की है।
और फिर सवाल उठता है, आखिर ऐसा होता क्यों है? दिमाग इतना व्यस्त क्यों हो जाता है? क्या वजह है इसकी?
यहीं पर हमें दिमाग के अंदर झांकने की जरूरत पड़ती है। किताब हमें कुछ मुख्य खिलाड़ियों से मिलवाती है।
ओके।
जैसे हमारे दिमाग का CEO कौन है?
CEO
कौन? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, PFC।
यहीं से हम सोच समझकर फैसले लेते हैं, ध्यान लगाते हैं, प्लानिंग करते हैं।
अच्छा, तो अगर ये ठीक से काम ना करे
तो फोकस करना मुश्किल हो जाता है। हम बिना सोचे समझे काम कर सकते हैं, इम्पल्सिव हो सकते हैं।
समझी। और कोई खिलाड़ी?
एक और है, एंटीरियर सिंगुलेट गायरस, ACG। इसे आप दिमाग का गियर शिफ्टर समझ लीजिए।
गियर शिफ्टर मतलब?
ये हमें एक विचार या काम से दूसरे पर आसानी से जाने में मदद करता है। अगर ये अटक जाए, मतलब ओवर एक्टिव हो जाए,
तो हम एक ही बात पे अटके रह सकते हैं। चिंता या जुनून हावी हो सकता है।
बिल्कुल, जैसे OCD में होता है।
और चिंता का गढ़ वो कहाँ है?
वो है बेसल गैंग्लिया। जब ये जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो घबराहट और पैनिक वाली फीलिंग्स आती हैं।
ओ, और भावनाएं, इमोशंस।
उसके लिए लिम्बिक सिस्टम है, भावनाओं का केंद्र, और टेम्पोरल लोब्स हैं जो याददाश्त और मूड को स्थिर रखने में मदद करते हैं।
तो जब इन हिस्सों के काम करने के तरीके में गड़बड़ी आती है तो हमारा दिमाग व्यस्त महसूस होने लगता है।
सही।
और जो बात वाकई दिलचस्प है, वो डॉक्टर एनिबाली कहते हैं, हम अंदाजा नहीं लगाते, हम देखते हैं।
स्पेक स्कैन से।
हाँ, ये तकनीक हमें असल में ये देखने में मदद करती है कि दिमाग के कौन से हिस्से ज्यादा या कम एक्टिव हैं।
इससे मरीज को कैसा लगता होगा जब वो अपने स्कैन में देखता है कि प्रॉब्लम कहाँ है? उन्हें अक्सर बड़ी राहत मिलती है जब कोई देखता है कि उसकी चिंता की वजह दिमाग के बेसल गैंग्लिया की ओवर एक्टिविटी है। तो उसे लगता है कि हाँ, ये सिर्फ मेरे मन का वहम नहीं है, ये उसकी पीड़ा को एक शारीरिक आधार देता है।
ये तो बहुत पावरफुल होगा, सेल्फ ब्लेम कम होता होगा।
बिल्कुल, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी व्यस्त दिमाग के पीछे कुछ और छिपे कारण भी हो सकते हैं।
अच्छा, जैसे कि?
किताब इस पर भी रोशनी डालती है। जैसे, क्या कभी सोचा है कि सिर पर लगी कोई पुरानी चोट, जिसे हम भूल भी गए हों,
हाँ,
वो भी बाद में चिड़चिड़ापन या मूड स्विंग्स की वजह बन सकती है? हल्की चोटें भी।
अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
या फिर हमारे माहौल में मौजूद टॉक्सिन्स, जैसे घर में फफूंद लग जाती है कभी कभी,
उफ़, हाँ,
या हैवी मेटल्स, कुछ इन्फेक्शन भी जैसे लाइम डिजीज, दिमाग में सूजन पैदा करके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं।
और हॉर्मोन्स का क्या, उनका भी असर होता है?
गड़बड़ हो, इसका असर भी सीधे हमारे मूड और सोचने की क्षमता पर पड़ सकता है।
और आजकल वो गट ब्रेन एक्सिस की भी बहुत बात होती है ना, पेट का दिमाग से कनेक्शन।
हाँ, हमारी आंतों की सेहत का हमारे दिमाग पर सीधा असर होता है। इसीलिए सिर्फ दिमाग ही नहीं, पूरे शरीर की सेहत पर ध्यान देना जरूरी है। एक पूरी मेडिकल जांच कई बार छुपी हुई वजहों को सामने ला सकती है।
तो हमने समस्या समझ ली, कुछ संभावित कारण भी जान लिए, अब आते हैं समाधान पर। किताब क्या कहती है?
किताब इसे एनिबाली मेथड कहती है। ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। शुरुआत होती है बुनियाद से, लाइफस्टाइल।
लाइफस्टाइल, ओके।
किताब मस्तिष्क स्वास्थ्य के 4 स्तंभ बताती है।
4 स्तंभ कौन कौन से?
पहला है पोषण। दिमाग को सही ईंधन चाहिए।
क्या खाना चाहिए?
अच्छा प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड्स जो मछली, अखरोट, अलसी में मिलते हैं, ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब फल, सब्जियां।
और क्या नहीं खाना चाहिए?
चीनी और प्रोसेस्ड खाना, इनसे बचना है। दूसरा स्तंभ है व्यायाम।
एक्सरसाइज तो शरीर के लिए होती है ना?
शरीर के साथ साथ दिमाग के लिए भी बहुत जरूरी है। ये दिमाग में खून का बहाव बढ़ाता है, अच्छे केमिकल्स रिलीज करता है जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन, और नई ब्रेन सेल्स बनने में भी मदद करता है।
वाह, तीसरा स्तंभ।
तीसरा और बेहद जरूरी, नींद।
नींद तो बस आराम के लिए होती है।
नहीं नहीं, नींद के दौरान ही हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है, यादें पक्की करता है, इमोशंस को रेगुलेट करता है और हाँ, खुद की सफाई भी करता है। अच्छी नींद की आदतें बनाना बहुत जरूरी है।
अच्छा, चौथा स्तंभ।
चौथा है तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट।
वो कैसे?
गहरी सांस लेना, माइंडफुलनेस मतलब वर्तमान पल में पूरी तरह मौजूद रहना, ध्यान लगाना, ये तकनीकें हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद करती हैं।
तो ये चार चीजें हो गई, खानपान, कसरत, नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये तो हुई बुनियाद।
हाँ।
लेकिन कभी कभी सिर्फ इनसे बात नहीं बनती, और मदद की जरूरत होती है।
तब क्या?
यहीं पर लक्षित सप्लीमेंट्स और दवाएं काम आ सकती हैं।
दवाएं? लेकिन लेखक का नजरिया यहाँ भी शायद थोड़ा अलग होगा।
हाँ, वो कहते हैं कि दवा का चुनाव सिर्फ लक्षणों के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि स्पेक्ट स्कैन से मिले दिमाग के पैटर्न के आधार पर होना चाहिए।
मतलब ये देखकर कि कौन सी दवा दिमाग के किस हिस्से पर असर करेगी।
एग्जैक्टली। और वो कुछ ब्रेन सपोर्टिंग सप्लीमेंट्स का भी जिक्र करते हैं।
जैसे?
जैसे गाबा, एल-थियानीन जो ग्रीन टी में मिलता है, मैग्नीशियम, 5-HTP, ओमेगा-3 वगैरह। इनके पीछे का विज्ञान भी समझाया गया है।
लेकिन ये तो डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए होगा ना?
बिल्कुल। सबसे अहम बात, इलाज हमेशा व्यक्तिगत होना चाहिए, पर्सनलाइज्ड। जो एक के लिए काम करे जरूरी नहीं दूसरे के लिए भी करे।
सही बात है।
और दवाओं के अलावा?
दवाओं के साथ साथ या कभी कभी उनकी जगह मनोचिकित्सा यानी थेरेपी की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। थेरेपी मतलब बातें करना।
ये सोचना गलत है कि थेरेपी सिर्फ बातें करना है। थेरेपी असल में हमारे दिमाग को रीवायर करने में मदद करती है।
रीवायर? कैसे?
इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा दिमाग बदल सकता है। थेरेपी उस बदलाव में मदद करती है।
कौन सी थेरेपीज काम करती हैं?
कई तरह की हैं, जैसे CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये हमें अपने नेगेटिव विचारों को पहचानना और उन्हें चुनौती देना सिखाती है।
और
एक और शक्तिशाली तकनीक है EMDR, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। ये खासकर पुराने सदमों या ट्रॉमा को प्रोसेस करने में बहुत कारगर है। इनके अलावा हिप्नोसिस या पारंपरिक टॉक थेरेपी भी मददगार हो सकती हैं। थेरेपी हमें सोचने के नए स्वस्थ पैटर्न बनाने का औजार देती है।
तो दवा, सप्लीमेंट्स, थेरेपी और कुछ?
हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर लेखक जोर देते हैं, जुड़ाव और उद्देश्य की शक्ति।
जुड़ाव और उद्देश्य मतलब?
हमारा मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ हमारी अंदरूनी दुनिया तक सीमित नहीं है। हमारे रिश्ते, हमारा सोशल सर्कल, समाज से हमारा जुड़ाव और जिंदगी में किसी मकसद का होना,
ये सब भी मायने रखता है।
बहुत। ये सब तनाव के खिलाफ एक मजबूत कवच का काम करते हैं।
अच्छा, और क्या?
कृतज्ञता का अभ्यास करना, माफ करना खुद को और दूसरों को, और ऐसी एक्टिविटीज में शामिल होना जो हमें मायने रखती हैं, जो हमारे मूल्यों से मेल खाती हैं, ये सब मिलकर एक संपूर्ण और स्थायी मानसिक सुकून बनाने में मदद करते हैं।
तो ये सिर्फ दिमाग को ठीक करना नहीं है, बल्कि एक भरपूर जिंदगी जीने के बारे में है।
बिल्कुल।
इस पूरी चर्चा से कुछ बहुत गहरे और जरूरी संदेश निकल कर आते हैं ना?
हाँ बिल्कुल। पहला तो मेरे सबसे यही कि मानसिक बीमारी असल में दिमाग की बीमारी है।
हाँ, ये कोई शर्म की बात नहीं, कोई चारित्रिक दोष नहीं। जैसे दिल की बीमारी होती है, वैसी दिमाग की भी हो सकती है। ये सोच कितनी राहत देती है,
और खुद के प्रति और दूसरों के प्रति ज्यादा हमदर्द बनाती है।
दूसरा अहम संदेश है, लक्षणों के बजाय जड़ तक जाओ।
हाँ, सिर्फ चिंता या अवसाद का लेबल लगा देना काफी नहीं, पूछना जरूरी है क्यों,
क्या वजह, दिमाग की केमिस्ट्री है, कोई पुरानी चोट, हार्मोन की गड़बड़ी या कुछ और। वजह समझने से ही सही इलाज मिल सकता है।
और ये वाली बात तो सबसे ज्यादा उम्मीद जगाती है। हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, वो बदल सकता है।
न्यूरोप्लास्टिसिटी।
हाँ, हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो सीखते हैं, उससे हमारे दिमाग के कनेक्शन बदलते हैं, नए रास्ते बनते हैं।
ये जानना कि हम अपने दिमाग को एक्टिवली बदल सकते हैं, ये बहुत बड़ी शक्ति देता है।
और इसीलिए शायद वो समग्र एकीकृत दृष्टिकोण की बात करते हैं।
हाँ, कोई एक जादुई गोली नहीं है। दवा, थेरेपी, खानपान, कसरत, नींद, तनाव प्रबंधन, सामाजिक जुड़ाव, ये सब मिलकर काम करते हैं।
जैसे एक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में हर साज का अपना महत्व होता है और सब मिलकर ही एक खूबसूरत धुन बनाते हैं। क्या बढ़िया उपमा है। वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए इन सभी पहलुओं का तालमेल जरूरी है।
हाँ, ये होलिस्टिक अप्रोच वाली बात तो हमारे यहाँ भारत में वैसे भी समझी जाती है, जहाँ तन मन और आत्मा के संतुलन पर हमेशा जोर दिया गया है।
बिल्कुल। और आखिरी बात, इलाज व्यक्तिगत होना चाहिए, पर्सनलाइज्ड।
हाँ, वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं है। हर किसी का दिमाग अलग है, हर किसी की कहानी अलग है। स्पेक्ट स्कैन जैसे उपकरण हमें इसी व्यक्तिगत जरूरत को समझने में मदद करते हैं।
किताब ने कुछ बातें तो सच में दिमाग में बैठ जाती हैं, जैसे वो कहते हैं, हो सकता है आपका व्यस्त दिमाग आपकी गलती ना हो, लेकिन इसे संभालना आपकी जिम्मेदारी जरूर है। ये कितना एम्पावरिंग है, दोषारोपण से हटकर हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है।
हाँ, और वो बात कि हम अंदाजा नहीं लगाते, हम देखते हैं, ये विज्ञान और स्पष्टता पर जोर देता है, अटकलें नहीं, सबूत।
और मेरा पसंदीदा, आप उस दिमाग के साथ फंसे नहीं हैं जो आपके पास है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए आप आज जो भी चुनाव करते हैं, वो सक्रिय रूप से उस दिमाग को गढ़ रहा है जो आपके पास कल होगा।
वाह, ये तो सच में उम्मीद जगाता है। हमारे छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसले भी हमारे दिमाग को बदल सकते हैं।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, इन्हें अमल में कैसे लाएं? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स?
पहला कदम तो शायद सोच बदलने का है। सेल्फ क्रिटिसिज्म बंद करें।
मतलब खुद को कोसना बंद करें?
हाँ, अगली बार जब ध्यान न लगे या चिड़चिड़ाहट हो तो मैं आलसी हूँ या मुझ में ही खराबी है, सोचने के बजाय सोचें, शायद मेरे दिमाग के किसी हिस्से को थोड़ी मदद चाहिए। मैं क्या कर सकता सकती हूँ? क्या 10 मिनट टहलने जाऊँ या कुछ गहरी सांसें लूँ?
ये अपने प्रति ज्यादा सहानुभूति रखने जैसा है। अच्छा है, दूसरा?
दूसरा, हम सब एक छोटा सा ब्रेन हेल्थ ऑडिट कर सकते हैं। उन 4 स्तंभों को देखें, पोषण, व्यायाम, नींद, तनाव प्रबंधन।
ईमानदारी से?
हाँ, ईमानदारी से सोचें कि आप कहाँ अच्छा कर रहे हैं और कहाँ सुधार की गुंजाइश है, और फिर बड़े मुश्किल बदलावों के बजाय छोटे टिकाऊ कदम उठाएं।
जैसे?
जैसे रोज रात को सोने से आधा घंटा पहले स्क्रीन बंद करना, या दोपहर के खाने में सलाद शामिल करना, या हफ्ते में 3 दिन 20 मिनट की वॉक। छोटे कदम ज्यादा असरदार हो सकते हैं।
तीसरा?
तीसरा, एक ज्यादा जागरूक मरीज बने। अगर आप किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो अपने डॉक्टर से सही सवाल पूछें।
क्या पूछें?
क्या मेरे लक्षणों का किसी पुरानी चोट या हार्मोन असंतुलन से कोई लेना देना हो सकता है? क्या पूरी जांच की गई है? क्या हम एक होलिस्टिक अप्रोच अपना सकते हैं? मतलब अपने लिए आवाज उठाएं।
चौथा,
लक्षित रणनीतियां अपनाएं। अगर आप जानते हैं कि आपकी मुख्य चुनौती क्या है, जैसे विचारों में अटक जाना या बहुत ज्यादा चिंता, तो उसके हिसाब से तकनीकें चुनें।
मतलब अगर विचार अटकते हैं तो माइंडफुलनेस या ध्यान भटकाने की तकनीकें?
हाँ, और अगर सामान्य घबराहट है तो गहरी सांस लेने के अभ्यास या योग पर ध्यान दें। अपनी जरूरत के हिसाब से टूल चुनें।
और आखिर में
ये समझ हमें दूसरों के प्रति भी ज्यादा हमदर्द बना सकती है।
वो कैसे?
जब हम किसी के गुस्सेल या आवेगी व्यवहार को देखते हैं तो शायद हम सोच सकते हैं कि हो सकता है उनके दिमाग की कार्यप्रणाली में कोई चुनौती हो। ये हमें उन्हें लेबल करने के बजाय समझने और ज्यादा रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया देने में मदद कर सकता है।
ये बहुत गहरी बात है। तो इस पूरी बातचीत से आपके लिए सबसे बड़ा सबक क्या रहा?
मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। हम उस अंग के प्रबंधक बन सकते हैं जो इन्हें पैदा करता है, हमारा दिमाग। मानसिक पीड़ा अक्सर एक वास्तविक शारीरिक समस्या होती है जिसे समझा जा सकता है और जिसका इलाज किया जा सकता है। ये जानने से शर्म और लाचारी की जगह एक सक्रिय देखभाल और उम्मीद की भावना पैदा होती है।
और मेरे लिए सबसे स्थायी सीख है न्यूरोप्लास्टिसिटी की सच्चाई, कि हमारा दिमाग बदल सकता है। ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं, ये विज्ञान है। ये जानना कि हमारे आज के छोटे छोटे चुनाव, हमारी आदतें, हमारे सोचने का तरीका सचमुच हमारे कल के दिमाग को आकार दे रहे हैं, ये बहुत शक्तिशाली एहसास है। ये हमें बदलाव की उम्मीद और उसकी चाबी दोनों देता है। ये किताब विज्ञान और स्वसहायता के बीच एक जरूरी पुल बनाती है।
तो अगर हमारा दिमाग वाकई इतना बदल सकता है, तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी आज की कौन सी एक छोटी सी आदत कल हमारे मानसिक सुकून पर सबसे बड़ा असर डाल सकती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।